नंबर 10। और यहां पे आप देखेंगे कि भगवान परमात्मा से कैसे थोड़ा अलग तरह से कार्य करते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान निष्पक्ष रहते हैं, तुम्हें पाप करना है पाप करो, तुम्हें पुण्य करना है पुण्य करो, हमें मतलब नहीं। लेकिन यहां पे भगवान उस प्रकार से पक्षपात नहीं करते। तो आप देखिए जरा मेरे पीछे बोलिएगा, टेक्स्ट नंबर 10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन माम् उपयान्ति ते। ये श्लोक थोड़ा ट्विस्टिंग है, आप देखिएगा। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। एक बात से पहले कि हम तात्पर्य में जाएं, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रीतिपूर्वक का मतलब क्या है। क्या आप में से कोई व्यक्ति बता सकते हैं कि प्रीतिपूर्वक मतलब क्या है? प्रभु जी के पास माइक दे दीजिए, क्योंकि और किसी के पास तो उत्तर होता नहीं है। यस,
भक्ति सिद्धुम जो अनुकूल है ना,
हाँ, अनुकूल भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कोई भौतिक लाभ की इच्छा से ना। जैसा कि भगवान ने यहाँ पे इससे पहले वाले श्लोक में बताया, क्या आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि पिछले वाले श्लोक को हम देख कर सुनकर समझ सकते हैं कि भक्तों का भगवान में सहज अनुराग है। कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको बड़ा संतोष होता है। यानी कि उनका संतोष इस बात से नहीं है कि कथा के बाद कितना डोनेशन आएगा। अरे बड़ा कम दिया भाई, 50,000 देना था और 20,000 ही दिया, संतुष्ट नहीं हुए। तो इस प्रकार का चर्चा केवल भक्तों के बीच में है, क्योंकि उनका तुष्य तोषण और उनका रमण किस में है? कथा में। यानी कथा ही उनका फल है और कथा ही साधन है। मेक सेंस? कथा साधन है, ऐसे प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की कथा ही उनको बस यही अमृत है, यही चीज, ये बात है। इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक जगह लेक्चर में समझाते हैं, प्रीतिपूर्वक का मतलब जो प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार किस लिए करते हैं? बिकॉज वो भगवान से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि अन्य लोग भी भगवान से प्रेम करें। अन्यथा लोग किस लिए प्रचार करते हैं? चेले इकट्ठे करने के लिए, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अपने यश के लिए। लेकिन प्रीतिपूर्वक का अर्थ सब समझ गए, भगवान में राग है और इस कारण से वो कथा बोलते ही रहते हैं भगवान के बारे में। सहज रूप से दूसरों को भी भगवान में की तरफ उन्मुख करने की इच्छा ऐसे भक्तों की होती है। मेक सेंस? और इसी कारण से आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्त हैं, और उनके सच्चे अन्यायों की हम जब सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमें भी भक्ति करने की प्रेरणा पड़ जाती है। ठीक है, आज इस संबंध में प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बता रहे थे कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर है वो लोगों में इस प्रकार की दिव्य चेतना भरने में पूरी तरह से असमर्थ होता है, क्योंकि वो खुद भी कुछ नियम का पालन नहीं करता, उसके भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। आसक्ति नारायण से नहीं होती है, आसक्ति लक्ष्मी जी से होती है। तो ये दिक्कत है, तात्पर्य। और हाँ, एक और बात हमने चर्चा किया था कि बुद्धि के द्वारा जो कि सत्वगुण से उत्पन्न होती है, आप भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन ध्यान देना चाहिए, आचार्य लोग उसको समझाते हैं कि ये जो बुद्धि योग है, ये कौन सा बुद्धि योग है? भक्ति योग। भगवान प्रसन्न होते हैं और दिव्य ज्ञान भक्त के हृदय में देते हैं, जिसको भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट कर देंगे। ये जो ज्ञान है वो भक्त के हृदय में भगवत कृपा से, भगवान की अनुकंपा से एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में भगवान की कृपा से उसका दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य कारण क्या है? कृष्ण कथा का आस्वादन, सेवन, चर्चा। तात्पर्य, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अर्थात अथवा यौगिक उन्नति। यौगिक मतलब योग। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर परपट है। हमारे पास बुद्धि ना हो तो उन व्यक्तियों के संग करना चाहिए जिनके पास बुद्धि है और वो है भगवत भक्त प्रामाणिक गुरु, और वो बताते हैं, वो समझाते हैं कि कैसे हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में भक्ति का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो उसके द्वारा व्यक्ति समझता है कि मुझे कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहिए, केवल एक बोझ मान के नहीं करना चाहिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए चाहिए। याद है ना आपको नियम आग्रह, नियम आग्रह मतलब नियम नहीं मानना, और नियम आग्रह मतलब बस खाली नियम मानने के लिए मानना, भक्ति में प्रगति करने के लिए नहीं मानना। और भक्ति में प्रगति का अर्थ क्या होता है मेरे मित्रों? टेस्ट है नाम। और टेस्ट कैसे बढ़ता है? श्रद्धा का विकास। ठीक है, तो यानी कि हमें जब हम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं तो उद्देश्य वरी बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक दिन भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करनी। तो ये बात अगर हम गुरु के मुख से सुन करके फिर उसके अनुसार साधना करते हैं तो ये बुद्धि योग कहलाएगा। भक्ति योग प्रभुपाद जिसको अलग अलग तरह से नहीं बोलते, बुद्धि योग भक्ति योग। इतनी बुद्धि जरूर होनी चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, गुरु को संतुष्ट करना, वैष्णव को संतुष्ट करना। और ऐसी अगर बुद्धि रहेगी, और दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो प्रभुपाद ने बताया है कि अंततो गत्वा मेरी चरम सिद्धि जीवन की क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति करना। नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति करना, मुक्ति प्राप्ति करना, या फिर सुतल लोक की प्राप्ति करना, इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? कोई भी सही नहीं। आप तो सब जानते हैं कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के चरण में प्रेम की प्राप्ति करना, उससे अन्यथा हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये समझ में आना चाहिए, यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमें बताया भी है गुरु की संगति के द्वारा सुन करके समझ करके हमें प्रगति करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। और एक और बात है कि भले ही हमारी प्रगति मंद हो, थोड़ी थोड़ी हो, धीरे धीरे करके हो, लेकिन एक ना एक दिन हम पहुंच जरूर जाएंगे। और देखिए ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि आप मान लीजिए आपका पौधा है, आपने आज बीज डाला और उस पर पूरा आरओ पानी डालना चालू कर दिया 200 लीटर, तो ऐसा नहीं कि तुरंत बढ़ जाएगा। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज्यादा भक्ति करने का प्रयास करते हैं, मतलब जबरदस्ती करने का प्रयास, फिर क्या होता है उनको टेस्ट तो मिलता नहीं, श्रद्धा होती नहीं है, तो छोड़ देते। तो इसीलिए बेहतर है कि धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, और उससे भी महत्वपूर्ण है नियमित रूप से भक्ति करता रहे, नियमित रूप से जल देता रहेगा, तो फिर धीरे धीरे देखिएगा कि उसके हृदय की कलमे साफ हो रहा है। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जितनी ज्यादा मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा उतनी ही मात्रा में सहज श्रद्धा और टेस्ट प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये होगा सब भगवान के नियोजन से, उनके अरेंजमेंट से। तो इसलिए भक्त का ये कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य करता रहे, भगवान की भक्ति करता रहे। ठीक है, और बार बार गुरु और वैष्णव का आश्रय लेकर के, उनकी संगति लेकर अपनी बुद्धि को फिक्स रखे भगवान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रवण के द्वारा आपकी जो बुद्धि है वो फिक्स रहती है, इधर उधर विचलित नहीं होती है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है, किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना मृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। थोड़ा समझिए, अगर आपको स्मरण हो रहा हो यह श्लोक आ रहा है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो कोई व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहे लेकिन साधन चूज करने में थोड़ा मिस्टेक कर सकता है। वो सोचे कि मैं कुछ कर्म करूंगा, कर्मकांड करूंगा, उससे मेरी भक्ति में प्रगति होगी, तो ये एक भक्ति पे आवरण है। या मैं निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान, कैसे जीव ब्रह्म है, इस प्रकार की बातों पे ध्यान दूंगा तो उससे शायद मेरी भक्ति की प्रगति होगी। लेकिन सिद्धांत ये है कि भक्ति इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करती। आप केवल भक्ति करें प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए और उससे सारा ज्ञान, सारा जो कचरा है वो सब साफ हो जाएगा, अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो बहुत बार लोग एस्ट्रोलॉजी को दिखाते हैं, सोचते हैं कि इससे मेरा नाम रुचि में मिल जाएगी या कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पूर्वगत कर्मों से, मैं कर्म की बात कर रहा हूं, भक्ति की सुकृति की बात नहीं कर रहा, उससे भक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट चलती है। तो इसलिए व्यक्ति को उनका आश्रय न लेकर के साधन क्या लेना है, भक्ति। भक्ति करने के लिए क्या आवश्यक है, भक्ति। ये कन्विंस, बहुत सिंपल सी बात है, कन्विंस होना चाहिए, और जितने मात्रा में कन्विंस होगा वो अच्छे से भक्ति योग या बुद्धि योगी कहलाएगा। कोई प्रश्न है यहां तक? ठीक है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। कहने का अर्थ, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है लेकिन भगवान की भक्ति और गुरु की बात पे निष्ठा है तो उसकी प्रगति है। आपको याद होगा कि साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, वसुदेव ब्राह्मण, रंगनाथ जी के टेम्पल में, जिसको गुरु जी ने बोला था कि आप गीता पढ़िए, और उसको कुछ समझ में नहीं आता था कैसे पढ़े, लेकिन उसको साक्षात कृष्ण का दर्शन हुआ करता था जब वो गीता पढ़ता था, याद है ना आपको। और उसके पूरा शरीर में रोमांच हो रहा था, वो रोने लगता था ऐसा करके, और महाप्रभु ने कहा कि तुम ही गीता के अभिप्राय को समझ पाए हो, तो उसका विश्वास था गुरु की बात पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट बात है? हाँ तो आपने बोल दिया, कहने का है गुरु की बात पे विश्वास, प्रमाणिक गुरु की बात पे विश्वास, और उसको उसको यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करना। मैं ऐसे विचार कर रहा था कि भगवद गीता भी पारायण करने में 2 घंटा लगता है और 16 माला करने में भी 2 घंटा लगता है, तो हमको प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की आज्ञा है तो उसको करते रहना चाहिए और हम उसमें सफलता और विफलता के विचार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह परपट में लिखते हैं गौरैया वाला एग्जाम्पल, एक गौरैया के अंडे बह गए थे समुद्र से, तो उसने समुद्र से पुकार करी मेरे अंडे वापस कर दो, उसने नहीं किए, तो पानी अपनी चोंच से भरना भर भर के बाहर निकालने लग गई। तो आप सोच सकते हैं इसका प्रचार जो प्रयास है बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन फिर उनके बड़े भैया, क्या नाम है उनका, गरुड़ जी ने देख लिया और समुद्र को डांटा, बोला तुम अगर इसके अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं स्वयं इस कार्य को पकड़ूंगा, तो फिर डर करके समुद्र उनको दे देता है। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने प्रयासों से कृपा को आकर्षित करते हैं, जब हम लोग प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर होती है और फिर उस कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति हमारे प्रयास से नहीं होती है, बट खूब भक्त प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा होती है। ऐसे बैठे बैठे आदमी सोचता रहे कि मुझे कृपा मिल जाएगी तो नहीं, कृपा वहां पर नहीं छुपी है, कृपा हमारे प्रयासों में छुपी हुई। ठीक है, इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। बहुत सुंदर बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक वक्तव्य है कि एक रिक्शे वाला भी बहुत सेवा करता है लेकिन 20 रुपए में अपनी सेवा को बेच देता है। एक रिक्शे वाला बहुत सेवा करता है ना लेकिन 20 रुपए में अपनी सेवा को बेच देता है। उसी प्रकार से अगर हम कुछ भगवान से भौतिक मांग रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, सेवा को बेचना। अभी हमारे ऊपर है कि हम सेवा को बेचना चाहते हैं या कृष्ण की हृदय से सेवा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है. यस यू वांट टू से समथिंग.
तो कोई व्यक्ति सेवा के बयां पे कुछ मांगता तो सेवा का फल कट जाता है.
यस. अगर भगवान भुक्ति और मुक्ति देकर के छूट जाएं तो प्रेम भक्ति नहीं देते. चैतन्य चरितामृत में लिखा है देंगे शुद्ध करेंगे इवेंचुअली, लेकिन अगर भुक्ति मुक्ति देकर के छूट जाते हैं तो प्रेम भक्ति नहीं देते. अच्छा तुमको स्वर चाहिए, हाँ ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं. मुक्ति चाहिए, हाँ ले लो नहीं तो ये रखा है. प्रेम भक्ति चाहिए, अच्छा अच्छा तो रुकना जरा. प्रेम भक्ति इतनी दुर्लभ वस्तु है कि कृष्ण देने में सोचते हैं, चेतन महाप्रभु नहीं सोचते. इसलिए महाप्रभु के पास आप जा सकते हो बहुत जल्दी. महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सोचते नहीं, इसलिए बड़ी जल्दी जल्दी दे देते हैं. कृष्ण सोचते हैं, वही कृष्ण है लेकिन उनका मूड थोड़ा अलग. हाँ कैन आस्क द क्वेश्चन इन द माइक.
सेवा प्रभु जी किस तरह से की जा सकती है, जैसे हम भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं ये भी कृष्ण की सेवा है.
अभी तो हमने चर्चा किया कि जो हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, अभी नेक्स्ट श्लोक में आप देखिएगा एस ये भगवत चर्चा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण आपने सुना है. तो तीन भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, और बोलेंगे सुनेंगे तो भगवान का स्मरण होगा. तो ये तीन मुख्य भक्ति हैं, और बाकी अन्य तरह से भी सेवा होता है, जैसे भगवान की परिचर्या करना, भगवान का मंदिर में सेवा करना, भगवान के मंदिर के मार्जन करना, बहुत तरह की सेवा होती है. लेकिन तीन मुख्य सेवा है और सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के बारे में सुनना और बोलना. जो हम चीजें सुनते हैं भगवान के बारे में उसकी चर्चा भी करना चाहिए, कि जितना आप चर्चा करोगे फिर वो और आपके हृदय में गहरी चली जाएंगी, और अगर छोड़ देंगे उसको तो वो नहीं जाएगी. और आप उसके विपरीत देखिए, जो हम भौतिक बातें सुनते हैं उनकी चर्चा करने में कितना उत्साह होता है. कुछ पॉलिटिक्स की बात सुन ले कोई व्यक्ति, तुरंत चर्चा कर लोगा, देखा आपने सुना ये हो गया वो हो गया. लेकिन भगवान के बारे में सुनते हैं, अरे आपको पता है भगवान से सब कुछ आया है. सुबह से कोई चर्चा किया आपकी इस तरह से, आपको पता है कि भगवान कृष्ण से इतना सारा कुछ निकाल लें फिर भी कृष्ण उतना ही रहते हैं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता लोग, हाँ निकल गया क्या दिक्कत है ना. एक नाम से सारे भगवान के नाम उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको पता है ये बात. तो ये बातें चर्चा नहीं करते भक्त, तो ये थोड़े आश्चर्य की बात. ओके. उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु बिजनेस पूर्वक. सही पढ़ रहा हूं गलत पढ़ गया नहीं, प्रेम पूर्वक लिखा क्या, प्रिंटिंग एरर हो गई इसमें. प्रेम पूर्वक. यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए. आप लोग आगे आ सकते हैं, ये दिक्कत नहीं. इसका पता है गलत एप्लीकेशन क्या है. एक भक्त बोले देखो इसमें लिखा है कि अगर भक्त बहुत बुद्धिमान नहीं है और वो शास्त्र ना भी समझ सके तो भी प्रगति होती है, इसलिए शास्त्र पढ़ने ही नहीं चाहिए. वाह धन्य है आप. ये एप्लीकेशन नहीं है. एप्लीकेशन ये है कि पढ़ने के बाद भी ना समझ में आए फिर भी गुरु के मार्गदर्शन में अगर सेवा करता रहे तो उसे समझ में आ जाएगा. जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एक शिष्य थे, वो माली थे, तो ज्यादा शास्त्र नहीं सुने पढ़ते थे लेकिन सुनते जरूर थे शास्त्र और सेवा में लगे रहते थे. कई साल के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आधा घंटे तक उनका फिलॉसफी के ऊपर टेस्ट लिया. सोचिए अगर आप लोगों का टेस्ट ले, हमारा कोई टेस्ट ले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम लोग की तो हालत ही खराब हो जाए. टेस्ट देने से पहले कह देंगे हम फेल हो गए, हम नहीं उतार सकते. लेकिन उसने सारे सही उत्तर दिए. तो फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोट करते हैं बहुत जोर से, सेवोन्मुखे ही जीवा दाउ स्वयमेव स्फुरत अधः. जब जीव भगवान की प्रेममय सेवा करता है तो भगवान अंदर से बुद्धि देते हैं, वो समझ पाते हैं. देखिए अगर आप भाषा समझ रहे हो इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्थ समझ रहे हो. जैसे मान लीजिए अभी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो इंग्लिश में लिखी रहती है ना इंजीनियरिंग किताब, अगर आप मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ाने लग जाएं तो लोगों को भाषा समझ में आएगी लेकिन अर्थ समझ में आएगा. तो उसी प्रकार से जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं उनको गीता की भाषा भले समझ में आए लेकिन उसका तात्पर्य महत्व नहीं समझ में आता. इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना भगवत गीता आपको समझ में आएगा. ठीक है, एक श्लोक और चर्चा करेंगे हम, फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा.